हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वाओ, क्या बात है मिस्टर अनाय सिंह, माय इडियट हस्बैंड, तुम्हें ठीक तरह से कन्फेशन करना भी नहीं आता है? इस तरह से कोई बोलता है क्या? और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो फिर तुम्हें जलन भी नहीं होती? अंकित को मेरे साथ देखकर कैसा रिएक्ट किया तुमने, जैसे कि कोई टीनेजर लवर हो तुम मेरे। मनस्वी अनय की पूरी बात सुनने के बाद उसे ताने मारते हुए बोली, मैं और उसे अंकित से जलूंगा? सीरियसली, तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। मेरा मतलब है, मुझे उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। बाकी इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, तुम बस ऐसे ही। अनय मनस्वी से नजरें चुराता हुआ बोला, और इतना बोलकर वो वहां से उठकर जाने लगा। तो थोड़ा सा आगे आकर मनस्वी ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इसका मतलब तुम कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे, या फिर शायद उससे भी ज्यादा, जो कल रात मुझे तुम्हारी आंखों में दिखा था। पता नहीं अपने कानों से कब सुन पाऊंगी मैं वो। अनय ने पीछे मुड़कर मनस्वी की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ आंखों में दिखा था, महसूस नहीं हुआ। मुझे तो लगा था कि तुम कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे प्यार को फील कर पाओगी। क्या हमेशा ही बोलकर बताना और जताना जरूरी होता है? अनय ने बहुत ही गहराई से मनस्वी की आंखों में देखते हुए ये बात कही, और उसकी बात सुनकर मनस्वी आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि पिछली रात उन दोनों के लिए ही बहुत स्पेशल थी और सच में उसने बहुत कुछ स्पेशल फील किया था। अनय ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा था उसे अपने प्यार का एहसास करने में। हाँ, वो थोड़ा बेचैन जरूर था क्योंकि ये सब ऐसे अचानक से हुआ, लेकिन उस मोमेंट में शायद उन दोनों के लिए ही ये जरूरी था। मनस्वी की गर्दन और अपर बॉडी पर अभी भी डार्क बाइटिंग मार्क्स दूर से ही नजर आ रहे हैं, जो कि अनय ने उसे अपने प्यार की निशानी देते हुए बनाए हैं। और वो सब कुछ याद करके मनस्वी को अपने पूरे बॉडी पर गूज़बम्स फील हुए, और उसने तुरंत ही अनय का हाथ छोड़ दिया और अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी अनय ने उसे इस तरह से नोटिस किया तो उसके सामने आकर बैठता हुआ बोला, याद आ गया ना? तब मुझे लगा नहीं याद है तो मैं अभी फिर से याद दिलाऊं क्या? इतना बोलते हुए अनय ने अपना चेहरा उसके चेहरे के एकदम ही सामने किया और उसके नज़दीक आते हुए अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड पर रख लिए और उसके होठों की तरफ ही बढ़ने लगा। मनस्वी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बात करते हुए वो अचानक ही रोमांटिक हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान रह गई और उसने अपना सिर हल्का सा पीछे किया, लेकिन पीछे बेड का क्राउन था तो वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा पाई। और अनय उसे पीछे हटते देखकर भी नहीं रुका और आगे आते हुए उसने मनस्वी के होठों पर अपने होठ रखते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया। मनस्वी सरप्राइज होकर पहले तो एकदम ही अपनी जगह पर जम गई, लेकिन फिर जब अनय ने हल्के से उसके होठों पर बाइट किया तो फिर मनस्वी भी अपनी आंख बंद करके उसे किस करने लगी और उसका पूरा साथ देने लगी। इसी बीच अनय के हाथ उसके कंबल के अंदर जाने लगे, और जैसे ही उसके ठंडे हाथ मनस्वी की गर्म बॉडी पर टच हुए, मनस्वी को एकदम ही पूरी बॉडी में सेंसेशन फील हुई और वो अनय के होठों को छोड़ती हुई उससे दूर हुई और फिर गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। इस बीच अनय के हाथ उसकी बॉडी पर हरकत करने लगे हैं और वो उसका कंबल बॉडी पर से खींचकर हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी मनस्वी ने उसे कंबल को कसकर पकड़ लिया और अपने ऊपर लपेटे हुए वो बेड से उठकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी पूरी बॉडी में बहुत ही तेज दर्द फील हुआ और वो एकदम से ही उठकर खड़ी नहीं हो पाई और उसके मुँह से एक दर्द भरी सिसकारी निकली और वो वापस ही बेड पर बैठ गई। माई बॉडी इज पेनिंग एज हेल, क्या किया है तुमने मेरे साथ, और अभी फिर से तुम मूड में लग रहे हो, सोचना भी मत, मनस्वी ने उसे वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में उसने अपनी आंख बंद करके दोबारा से खोली। मनस्वी की ये बात सुनकर अनय उसके करीब आया और पीछे से उसे गले लगाकर उसकी गर्दन पर हल्के से किस करते हुए बोला, सॉरी बेबी, क्या मैं कुछ ज्यादा ही रफ था कल रात को? लेकिन मुझे पता ही नहीं चला और उस वक्त तुमने भी नहीं रोका, तो अनय अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि मनस्वी उसकी तरफ गुस्से से घूर कर देख रही है और फिर उसी तरह गुस्से से बोली, हाँ तो उसे इंटेंस लव मेकिंग मोमेंट में क्या मैं तुम्हें बीच में रुकने के लिए बोलती? और वैसे भी उस वक्त मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये मेरी बॉडी का ये हाल होने वाला है अगली सुबह, और वैसे भी फर्स्ट टाइम था तो इट्स नॉर्मल ना। उसकी इस बात पर अनय थोड़ा सा सोचने लगा और फिर बोला, हॉट शावर से आराम मिलता है, मैंने कहीं पढ़ा था, चलो ट्राई करते हैं। चलो से क्या मतलब है, मैं खुद ही चली जाऊंगी, मनस्वी उसकी बात सुनकर तुरंत ही बोली। हाँ वो तो देख ही रहा है मुझे, इतनी ज्यादा अच्छी हालत में जो हो, और क्यों मुझे गिल्ट फील करवा रही हो? मुझे उस वक्त सच में पता नहीं चला कि मैं इतना ज्यादा वाइल्ड हो गया था, बट अब कम से कम मुझे आफ्टर केयर का मौका तो दो, बिलीव मी यू विल फील गुड। इतना बोलते हुए अनय उठकर उसके सामने आया और उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए अनय ने उसे वही साइड में पड़ा हुआ बाथरूम पहनाया और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ही बढ़ गया। मनस्वी कुछ भी नहीं बोल पाई क्योंकि वो उसकी ऐसी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा फील कर रही है और खुद को एकदम लकी महसूस कर रही है। शायद इसीलिए उसने अनय को चूज़ किया है और अब उसे अपना ये डिसीजन एकदम सही लग रहा है और वो उस पर बहुत प्राउड फील कर रही है। अनय उसे गोद में लेकर वॉशरूम में आया और उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने गीजर ऑन किया और कुछ देर वेट करने के बाद उसने शावर ऑन किया और बोला, अभी तुम ठीक फील कर रही हो या फिर खड़े होने में भी प्रॉब्लम है क्या, तुम बताओ। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बाहर जाओ तुम, और ठीक नहीं भी होंगी तो क्या मुझे पकड़कर यहीं खड़े रहोगे शावर के नीचे, हल्का सा मुस्कुराकर मनस्वी ने उसे दरवाजे की तरफ पुश करते हुए कहा। नहीं, सिर्फ खड़ा तो नहीं रहूँगा, चाहो तो कंपनी दे सकता हूँ, अनय ने काफ़ी शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मनस्वी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे दरवाजे की तरफ ही धकेल दिया और फिर जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला मुस्कुराते हुए दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और फिर गर्म पानी का शावर लेने लगी। और गर्म पानी में नहाते हुए उसकी बॉडी का दर्द सच में पहले से काफ़ी कम हो रहा था और वो अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है। शबातें। आदित्य और सुनैना कार में अपने घर के वापसी के रास्ते में हैं क्योंकि वो दोनों ही वहाँ पर नहीं रहना चाहते और पिछली रात जो कुछ भी पार्टी में हुआ और आदित्य पर हमला, उसके बाद आदित्य को वहाँ की सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपना विला वापस जाना चाहता है। वो दोनों अभी रास्ते में ही थे और आदित्य सुनैना दोनों एक साथ पीछे बैक सीट पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा है। सुनैना अब आदित्य से इतनी ज़्यादा नाराज़ नहीं है क्योंकि आदित्य ने उसे पूरी बात एक्सप्लेन कर दिया है और सुनैना तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उसे अच्छे से पता है कि आदित्य ये सारी चीज़ हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ही करता है। इसके अलावा कल रात हुए वाले अटैक के बारे में भी उसने सुनैना को बता दिया क्योंकि अगर वो सुनैना को ये बात नहीं बताता तब भी उसे बाद में कहीं से पता चलती तो फिर उन दोनों के बीच इस बात को लेकर भी मनमुटाव हो जाता और आदित्य उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चाहता।
आदि, ये सब कुछ कब खत्म होगा फाइनली, और कब हम दोनों एक नॉर्मल कपल की लाइफ जिएंगे? हमारी शादी को एक साल हो रहा है लेकिन ये सारी प्रॉब्लम तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आदित्य की बांह पकड़कर उसके कंधे पर अपना सिर झुकाते हुए सुनैना बोली, डोंट वरी, ये सब कुछ तो लगा ही रहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आदित्य ने उसके गाल पर अपने हाथ से टच करते हुए कहा तो सुनैना ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर आंख बंद करके कुछ सोचती हुई बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, मतलब तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे पता है तुम मेरा पूरा ख्याल रखोगे, लेकिन अपना, तुम्हें मेरे लिए अपना ख्याल भी रखना है क्योंकि तुम्हारे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, तुम इतना मत सोचो, और वैसे भी वो शूटर पकड़े गए हैं और चाचा चाची भी जेल में हैं, उन पर केस बनेगा और बाकी के जिन लोगों ने भी इन सब में उनका साथ दिया होगा मैं उन सब का पता लगा लूंगा और उनका वो हाल करूंगा कि कभी कोई हमारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। आदित्य ने बहुत ही मजबूती से ये बात कही क्योंकि उसने पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी अपनी पलकें झुकाई और बोली, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन वो लड़की इस तरह से जो तुम सबकी मदद करते रहते हो, अगर वो कभी बैकफायर कर गया तो, क्योंकि उस लड़की का वो बॉयफ्रेंड, वो मुझे तुम्हारा दुश्मन ही लग रहा था जिस तरह से उसने तुम्हें वो सब कुछ बोला। आदित्य ने सुनैना की बात पर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ वो एक तरह से मेरा राइवल ही है क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने भी होटल इंडस्ट्रीज में कदम रखा है और वो बेवकूफ़ अभी टॉप 10 में भी नहीं है उसकी कंपनी और वो सीधा नंबर 1 सिंघानिया इंडस्ट्री से सीधा दुश्मनी माल दे रहा है क्योंकि उसके पापा के कुछ पॉलिटिशियन से काफ़ी अच्छे रिलेशन है तो उसे लगता है कि वो जो कुछ भी करेगा उसके पापा उसे बचा लेंगे। लेकिन अभी शायद उस लड़की की वजह से दोनों बाप बेटे में भी नहीं बन रही और मैं इस बात का भी पूरा फ़ायदा उठाऊँगा और इसे अपने फ़ायदे के लिए उसे करूँगा। पूरी बात समझने की कोशिश करते हुए सुनैना थोड़ी सोच में पड़ गई और थोड़ी देर तक सिर्फ सोचते हुए वो कुछ नहीं बोली और तभी आदित्य का मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और वो कॉल पर बात करने लगा। उसकी तरफ देखते हुए सुनैना उसकी बातें सुन रही है लेकिन उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसे इतना समझ आ गया है कि उसके पर्सनल असिस्टेंट नदीम या फिर सिक्योरिटी गार्ड का ही फ़ोन है क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात ही कर रहा था। इसलिए सुनैना ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से आदित्य के कंधे पर अपना सर रखते हुए अपनी आँखें हल्के से बंद कर लीं। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, तुम दोनों घर आ जाना और वहाँ पर ही बाकी की बातें क्लियर कर देंगे। और उसे बारे में पता किया या नहीं तुमने, कल मुझे फिर से मैसेज आया था? हाँ मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी आखिर बात तो चलना चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, आई वॉन्ट रिजल्ट्स, थोड़ी तेज़ आवाज़ में इतना बोलकर आदित्य ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो सुनैना ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा तो आदित्य उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बदले में सुनैना भी मुस्कुरा दी। टू बी कंटिन्यूड।